ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
லோக தோ பைலே சே சத்கர்ம நீ கரதே, சோடோ சோடோ கான் சே குச்ச லோக படே குஷ் ஹோ ஜாதே, படே அச்சே குரு மிலே, குஷ் நீ கர்னா ஹே. गीता पाठ नहीं, गीता पाठ भी नहीं करो, दान पुण्य नहीं करो, यहां तक कहने वाले होते हैं ये जनेऊ व्यर्थ है, सो मिथ्या है, जनेऊ क्यों रखना. और महिला लोग को गृहस्थ विवाह करने पर पतिव्रता स्त्री को यहां दान करना है, बिंदु आदि, सिंदूर आदि, काज आदि, चूड़ी आदि लगाना चाहिए. कई सो मिथ्या, इसो छोड़ो, हमारे प्रवचन में आने पर इसो छोड़ो, मिथ्या सो है. सब मिथ्या मिथ्या कहते कहते कहां तक चले. जगन्नाथपुरी में कोई ऐसे कथा करते थे साधु, थोड़ी दिन के बाद उनको मार पीट कर भगा दी वहां से. बोले कहां से आए, अंत में यहां तक कहने की इसमें ये नहीं, बिंदु नहीं लगाओ. महिला को जो लगाते हैं ना कुंकुम आदि, कुछ लगाते हैं जो विवाह करने के बाद लगाना, हमको तो पहचानने नहीं आता है. चिल तिलक से जो लगाते थे ना, पहले सिंदूर लाल लाल लगाते थे कोई यहां, हाँ वो कोई यहां लगाते थे, उसको देखने से पता चलता है इनके पति है, विवाहित है. और जो विवाहित नहीं उनका अलग रहता है, और कोई विधवा हुए तो उनका अलग रहता है. पहले सोता है विधवा होते तो सफेद वस्त्र पहनते थे, यहां नहीं लगते थे, भूषण नहीं लगाते थे. अभी कहीं कहीं देखे विधवा भी भूषण भी है, ऐसा आजकल कहीं कहीं चलता है. और ये बिंदु से भी पहचाना, वाले पहचानते होंगे, हमको पहचान नहीं आता है. और वो सब वो कहेंगे कुछ इसको नहीं लगाओ, ज्ञानी गुरु उपदेश करने लगे मिथ्या कह करके, चंदन नहीं लगा, तिलक नहीं करो, ये बिंदु नहीं लगा, हाथ में ये नहीं लगा, निषेध करने लगे. कुछ लोग तो सुनने वाले जो विपरीत मार्ग में चलने वाले बड़े खुश हो रहे थे, बाकी बाद में जगन्नाथपुरी के कुछ पंडित ब्राह्मण और कुछ लोग सेठ लोग भी उनको हटा दिए, आगे वहां नहीं जाते हैं. कोई एक थे वेदांत अभी है, वो कहीं कहीं करते हैं. तो ये नहीं, पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म समझ करके, बाकी जब तक शरीर है आपको भान होता है, क्षिप्त पिपासा है, मैं मनुष्य विषय मालूम है, तब तक उपासना करनी चाहिए. द्वैत उपासना का निषेध नहीं होता है. व्यावहारिक द्वैत है, पारमार्थिक अद्वैत का कोई विरोध नहीं. तब ऐसे करने से ही अंत तक उपासना, ईश्वर पूजा, भक्ति करनी चाहिए. यहाव जीवन त्रयो बंध्या वेदांत गुरु ईश्वरा, वेदांत गुरु ईश्वर जब तक जीवन है तब तक उनकी वंदना. देवताओं की प्रार्थना उपनिषद मिसले, पूरा देवता की प्रार्थना करते हैं तो सफलता मिलती है. अभी उपासना संहिता आदि विषय कर्म से अवरुद्ध उपासना कहा, आगे सोपाधि की उपासना भी व्याहृति के द्वारा कहा गया स्वराज्य फल के लिए. इतने जितने उपासना करने पर भी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए, किन्तु अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं है तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है. दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमानंदी का अभिव्यक्ति, यही मोक्ष है. जो सब चाहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान से ही होगा, ब्रह्म ज्ञान के बिना अन्य किसी उपाय से नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए आरंभ करते हैं. इसका नाम ब्रह्मानंद वल्ली. ओम ब्रह्मविद आप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सो स्मृते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्यतेति तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्नेरापः अद्भिः पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्युवन्नम् अन्नात् पुरुषः स वायस पुरुष वन्नर समय तसैदमेव शिर अयम दक्षिण पक्ष अयम उत्तर पक्ष अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति. ओम ब्रह्मविद आपनोति परम. यहां पहले ये सारे ब्रह्मानंद वल्ली में जो अर्थ कहेंगे उसका ही यही कहा गया, ब्रह्मविद आपनोति परम. इसी अर्थों को व्याख्यान करने के लिए एक पूरा वल्ली है. ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला. वो आपनोति परम, परम ब्रह्म को, निरतिशय ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद अपनति परम कह करके यही कहा, ज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मविद है। अब ब्रह्म क्या है इसका लक्षण भी कहेंगे। ब्रह्मविद अपनति परम कह करके यहां तो संक्षेप से वल्ली का अर्थ सूचित कर दिया, ब्रह्मज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त करता है। और ब्रह्म क्या है वो भी कहेंगे, लक्षण करें बताएंगे। परब्रह्म को प्राप्त करता है, यहां प्राप्ति भी अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति। दशम व्यक्ति स्वयं होते हुए सामने न दिखता है, गिनती करता है, अपने को दशम नहीं जान पाता है। जब कहते सबको गिना करके दशम तुम हो तो दशम को प्राप्त कर लेता है। दशम को प्राप्त करता है, दशम कौन है? स्वयं खुद है। स्वयं अपने आप को प्राप्त करना नहीं होता है, अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्त हो गया। ये अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्ति को ही प्राप्ति शब्द से कह देते, गौण प्रयोग है। इसी प्रकार यहां भी ब्रह्म अपना स्वरूप है, वास्तव सर्वात्मक ब्रह्म है, नित्य प्राप्त है। अज्ञान के कारण अप्राप्ति का भ्रम है। अज्ञान नष्ट होते ही, अज्ञान नष्ट होते अप्राप्ति भ्रम नष्ट हुआ। अप्राप्ति भ्रम नष्ट होना और प्राप्ति यही है, प्राप्ति उसमें गौण प्रयोग किया जाता है, अप्राप्ति भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये कहने के बाद पर ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला। कि यो हई तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, मुंडक उपनिषद आया था। तो ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाता है। यह जो कहा इसमें उसका लक्षण ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सूत्र रूप हुआ। संक्षेप से कहने वाले पूरा वल्ली को कहने के लिए इसको कहते सूत्रम। ब्रह्मविति पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मविति का ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म सामान्य तो हो गया, व्यापक कोई ब्रह्म है, किंतु उसका लक्षण चाहिए, जानना चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रमाण तो वाक्य है किन्तु लक्षण ब्रह्म का कोई नहीं होगा, स्वरूप निश्चय नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म का लक्षण कहने के लिए आगे मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसको कहते मंत्र वाक्य। ब्राह्मण वाक्य हो गया ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्राह्मण वाक्य के द्वारा सूचित अर्थ है ये वल्ली में पूरा, ब्रह्मानंद वल्ली में पूरा इसका ही स्पष्टीकरण होगा। ब्रह्म क्या है उसका लक्षण कहने के लिए आगे लक्षण है। अरे फलत ब्रह्मविद आपनोति परम कहा, पर ब्रह्म की प्राप्ति है। पर ब्रह्म सर्वात्मक है, तो उसकी प्राप्ति का अर्थ ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप होता है, अन्य कोई फल नहीं। तो इसको पहले कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका तदेशा अभ्युक्ता। यह जो ऋचा है ये कही गई लक्षण वाक्य के द्वारा, ये कही गई कहा गया ये सा अभ्युक्ता, जो पूर्व वाक्य में कहा गया ऐसा रीच शब्द ऋचा तिल्लिंग है, इसलिए ऐसा अभ्युता कही गई ऋचा। ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसमें जो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कहा गया उसके लिए आगे री के लक्षण करने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण है। लक्षण दो प्रकार होते हैं, एक स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण। स्वरूपम सत लक्षणम स्वरूप लक्षणम, स्वरूप होता हुआ जो लक्षण है उसको कहेंगे स्वरूप लक्षण। जो ब्रह्म का स्वरूप है उसका स्वरूप ही, उसमें कोई धर्म नहीं, स्वरूप होता हुआ लक्षण है इतर व्यावर्तक अन्य से पृथक करके बताने वाला। स्वरूप है जो स्वरूप अन्य से भिन्न करके परिचायक होता है, स्वरूपम सत स्वरूप होता हुआ जो लक्षण है वो स्वरूप लक्षण। दूसरा लक्षण होता है तटस्थ लक्षण। तटे तिष्ठति इति तटस्थ, नदी प्रवाह में जल बह जाता है, तो तट में किनारे में स्थित कोई बैठा है, कुछ पदार्थ है वो बहता नहीं, अपने अलग है, तट स्थित तट में स्थित हो करके वो उसको बता देता है, कोई खड़ा है पास में वो बता देता है स्नान करो ये ठंडा है गर्मी ये गंगा जी है। तट में स्थित होकर तटस्थ कहने का लक्षण, जो लक्षण कहेंगे स्वरूप में उसका संबंध नहीं है। स्वरूप तो गंगा जल प्रवाह अलग, वो अलग है। स्वरूप तटस्थ लक्षण होता है जन्माद्य से यतो वायुमानी भूतानी जायंती, इसमें आगे आएगा। ये न जाता नहीं जीवंती यत प्रयंत अभिशंभिशंती तद ब्रह्म। जगत जन्म उत्पत्ति कारणत्व जन्मादि यस्य यतः ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुर्थ संपन्न मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करे। अब ब्रह्म क्या है कैसे है उसका लक्षण करने के लिए द्वितीय सूत्र है। जन्मादि अस्य यतः, अस्य का थी जगत का, जन्मादि जिससे, जन्म आदि जन्म आदि से स्थिति और लय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे जिसके द्वारा वही ब्रह्म है। अर्थात जगत उत्पत्ति कारण ब्रह्म है, जगत स्थिति कारण ब्रह्म है, लय कारण भी ब्रह्म है। तो वहां तीन लक्षण है, जगत जन्म कारणत्व, जगत स्थिति कारणत्व, जगत प्रलय कारणत्व, ये है तटस्थ लक्षण। यहां स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म का लक्षण अलग अलग है, तीन लक्षण है। सत्यम ब्रह्म एक लक्षण पर्याप्त है, ज्ञानम ब्रह्म एक लक्षण है, अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म एक होने से एक ही वस्तु को कहने के लिए एक ही पद का प्रयोग करना होता है। जल सामने है कहे इदम किम, कहेंगे जलम, और जलम भी कहो अम्बु भी कहो नीरम भी कहो ऐसा होता है। किम अस्ति जलम अम्बु नीरम च, ऐसा कह दिया। वही जल है वही अम्बु नीर है, एक शब्द कहने के दो शब्द प्रयोग करते तो पुनरुति दोष है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं लोक में प्रयोग होता है। तो यहाँ एक ही ब्रह्म को कहने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम तीन कहा गया, इसलिए यह लक्षणार्थ लक्षण करने के लिए कहा गया, और तीन के द्वारा तीन विशेषण की व्यावृत्ति करनी है। जिसमें ये नहीं है वो शुद्ध ब्रह्म, जिसको निषेध करते हैं व्यावृत्ति होती है उसको कहते हैं व्यावृत्य निषेध्य। सत्य कहेंगे तो ब्रह्म असत नहीं है, असत्यत्व की व्यावृत्ति करने के लिए ब्रह्म हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जैसे सदैव समय दमग्रासी थी असद भी दमग्रासी थी, ऐसे श्रुति वाक्य है। ये पहले जगत असत था, असत का अर्थ नाम रूप अभिव्यक्त होने के पहले अनभिव्यक्त था, ये अर्थ है। किन्तु कुछ लोग कहते असत था मतलब बंध्यापुत्र शशि विषाण जैसे असत तुच्छ था, वो असत से जगत की उत्पत्ति हुई। तो उसे श्रुति में स्पष्ट कर दिया कुतस्तु खलु एवं स्याद, कथम असत असत जाए था, असत से सत्य की उत्पत्ति कैसे होगी। सत्य वेदमग्रासी इतर छांदोग में स्पष्ट है, तो भी लोगों की भ्रांति हो जाती है असत से जगत की उत्पत्ति। बौद्धों का मुख्य माध्यमिक मत है, कहते शून्य का विवर्त जगत है, इसलिए असत नहीं निषेध करने के लिए सत्यम कहा। ज्ञानम यह कार्य कारण से रहित है, कारण कहीं उपादान कारण जड़ होता है, इसे ब्रह्म कहीं जड़ होगा तो कहा ज्ञान जननी ज्ञानम, ओ जड़ नहीं है उसकी व्यावृत्ति के लिए ज्ञान कहा। जड़त्व निवृत्ति के लिए ज्ञानम सत्यम ज्ञानम, और जो पदार्थ से दिखते हैं परिच्छिन्न पदार्थ है, ब्रह्म भी कोई देश काल वस्तु परिच्छिन्न पदार्थ हो सकता है, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए कहा अनंतम ब्रह्म। एक शब्द का अर्थ यदि समझ ले पूरा ब्रह्म का लक्षण अनंतम ब्रह्म, अनंत शब्द का न अविद्यमान अंतो यस्य, जैसे अपुत्र जिसका पुत्र नहीं उसको अपुत्र कहते हैं, जिसमें रूप नहीं उसको अरूप निरूप कहते, वायु अरूप है रूप नहीं उसमें, इसी प्रकार जिसका अंत नहीं उसको अनंत कहते हैं। अंत का तो परिच्छेद सीमा, अंत तीन प्रकार होता है, देशकृत अंत परिच्छेद, कालकृत परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद। देश काल वस्तु तीन प्रकार परिच्छेद, देश परिच्छेद जिसमें है उसको कहेंगे देश परिच्छिन्न। कोई सामने वस्तु है ये मकान हो, ये पुस्तक हो, घट हो, एक देश में है, अन्य देश में नहीं है, उसको कहते देश परिच्छिन्न। पूरा समुद्र भी देश परिच्छिन्न है। समुद्र सर्वत्र है क्या? हिमालय में नहीं है। हिमालय देश परिच्छिन्न होगा क्यों? यहां नहीं है। जो देश परिच्छिन्न है उसको अनंत कहा जाएगा, वो अंत वाला हो गया। इसी प्रकार काल परिच्छिन्न होता है, जो एक काल में है एक काल में नहीं है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वो नित्य होगा? उत्पत्ति के पहले वस्तु थी, इसलिए वो वस्तु नित्य की से उत्पत्ति के पहले नहीं थी, तो हमेशा तीनों काल में रहने वाली होगी। सत्य होता है वह जिसका कभी भी व्यभिचार नहीं होता है, एक समय में जैसा हमेशा इसी प्रकार रहे। सत्य हुए जिसका कभी व्यभिचार परिवर्तन नहीं होता है, जैसे देखा ऐसे ही रहेगा, सर्वदा सर्वत्र समान रूप से रहे, वो सत्य है। और नहीं, देश परिचन्न हुआ, काल परिचन्न। काल परिचन्न हुआ जब एक काल में हो एक काल में नहीं हो, उसको कहते काल परिचन्न। जिसकी उत्पत्ति होती है वो काल परिचन्न है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले नहीं था। किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो किंतु नाश हो जाए, वो काल परिचन्न होगा? उत्पत्ति तो नहीं है किंतु नाश हो जाता है तो काल परिचन्न होगा? नाश के बाद रहेगा, इसलिए काल परिचन्न। या तो उत्पत्ति के पहले नहीं रहे अथवा नाश के बाद नहीं रहेगा तो काल परिचन्न हो गया। तीनों काल रहेगा तो काल परिचन्न नहीं है। घटपट पदार्थ, ये मकान, समुद्र, हिमालय पर्वत, ये काल परिचन्न है। हाँ, ऐसे काल परिचन्न। ये देश काल परिच्छेद रहित आकाश को मानते हैं, जो नित्य सर्वव्यापक आकाश, और नित्य जो कहते कभी नष्ट नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती। न्याय मत के अनुसार वैज्ञानिकों लोग कभी कहेंगे आकाश की उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं, देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं कहेंगे, किंतु वस्तु परिच्छेद मानेंगे। आकाश से भिन्न कोई पदार्थ है नहीं? आकाश से भिन्न कुछ नहीं। ये मकान आकाश से भिन्न नहीं? मकान आकाश से भिन्न है या नहीं है? जल आकाश से भिन्न है या नहीं है? नहीं है। आकाश पांच भूत है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पांच भूत में आकाश से भिन्न और कितने भूत रहा? आकाश से भिन्न पदार्थ है, इसलिए आकाश वस्तु परिच्छिन्न है। वस्तु परिच्छिन्न है आकाश? न्याय मत के अनुसार आकाश को नित्य कहते हैं। देश परिचन्न नहीं, काल परिचन्न नहीं, किंतु वस्तु परिचन्न मानते। केवल आकाश नहीं, आत्मा को भी, जीवात्मा, जीवात्मा को नित्य कहते, उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं, किंतु वस्तु परिचन्न है। क्योंकि केवल आत्मा जीवात्मा नहीं, ईश्वर भी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब अलग अलग द्रव्य है। द्रव्य अलग है ना? नहीं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष वायुभाव सात पदार्थ कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये तो पदार्थ द्रव्य कहते हैं। आत्मा से मन अलग कहते हैं, आत्मा से पृथ्वी, जल, तेज, वायु अलग कहते हैं, आत्मा से दिग, काल अलग कहते हैं। तो आत्मा भी वस्तु परिचन्न कहते हैं न्याय शास्त्र के अनुसार। वस्तु परिचन्न, देश परिचन्न, काल परिचन्न नहीं नित्य मानते, किन्तु वस्तु परिचन्न। श्रुति यहां विशेष कहती है ब्रह्म को अनंत कह करके, कोई भी अंत अर्थात परिच्छेद है ही नहीं ब्रह्म में। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद तो नहीं, वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। इसलिए तार्किक न्याय शास्त्र मत के अनुसार विशेष है। न्याय शास्त्र में कहेंगे आत्मा को नित्य मानते हैं, ईश्वर को भी नित्य मानते हैं, आकाश को भी नित्य मानते हैं, देश अर्थात काल परिच्छेद नहीं है, नित्य का अर्थ काल परिच्छेद नहीं है। और व्यापक मानेंगे आकाश को तो देश परिचन्न नहीं है, आत्मा को व्यापक मानते तो देश परिचन्न नहीं। देश परिचन्न नहीं, काल परिचन्न नहीं, ये तो मानते हैं, किंतु वस्तु परिचन्न मानते हैं। आकाश से बिना आत्मा, आत्मा से बिना काल, काल से बिना दिशा, दिशा से बिना पृथ्वी, ये सब मानने से वस्तु परिचन्न हो गई। किंतु ब्रह्म यदि तीन परिच्छेद में एक परिच्छेद रह जाए, उसको अपरिचन्न कहा जाएगा? जिसमें छह रूप है, सात प्रकार रूप है, सात रूप में से यदि एक रूप रहा, अन्य छह प्रकार रूप नहीं रहा, उसको निरूप कहेंगे या अरूप कहेंगे? निरूप कहा जाएगा, रूप वाला है, एक रूप है तो रूप वाला। एक पुष्प में ये पुष्प है, दो पुष्प समान जात, समान पुष्प, दोनों पुष्प में दो पुष्प पकड़ा है, दोनों पुष्प में रूप एक है या अलग अलग है? दो पुष्प का रूप अलग अलग, एक नहीं, एक प्रकार है, एक रूप नहीं, क्योंकि एक पुष्प को नष्ट कर देंगे, इसके पुष्प रूप चला गया, इसके पुष्प रहेगा रहेगा। यदि एक होता तो एक पुष्प नष्ट कर दिया, इसको अग्नि में थोड़ा कर दिया, काला पड़ जाएगा, तो ये भी काला हो जाए। रूप अलग अलग है, सजातीय होने से एक प्रकार रूप कहते हैं। तो बहुत रूप का अभाव होने पर भी यदि एक रूप है उसको निरूप नहीं कहा जाता है। और तीन अंत परिच्छेद में यदि दो एक परिच्छेद जिसमें रह जाएगा उसको परिच्छेद अनंत कहा जाएगा। ब्रह्म अनंत का है तो उसमें कोई भी परिच्छेद नहीं रहेगा, देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद भी नहीं। वस्तु परिच्छेद होता है एक वस्तु से दूसरा वस्तु भिन्न हो गया तो वस्तु परिच्छेद। एक वस्तु से पुस्तक से भिन्न माला, माला से भिन्न पट, पट से भिन्न लेखनी, ये सब वस्तु परिच्छेद है। ब्रह्म वस्तु परिच्छेद नहीं, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। ये छोटा अणु यदि मान ले ब्रह्म से भिन्न तो ब्रह्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद हो गया तो उसमें परिच्छेद वस्तु परिच्छेद आ गया, जिसमें वस्तु परिच्छेद रहेगा उसको अनंत कहा जाएगा। तो ये श्रुति अर्थ समझना, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण है, अनंत है ब्रह्म, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। ब्रह्म से भिन्न क्या पदार्थ रहेगा? कुछ भी नहीं, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। सारा जग जो दिखता है ब्रह्म से भिन्न लगता है, नाम रूपात्मक दिखता है, कल्पित तो भिन्न लगता है, वास्तव तो भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं होने पर भी कल्पित तो भेद रह सकता है। एक बिंब का हजार प्रतिबिंब है,